नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपरे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।